नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं आठवां स्कंद अध्याय 20, बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण, श्लोक क्रमांक 12। यद्यप्य स्वधर्मेन मां भन्नीयात् अनागसं तथाप्येनं न हिंशिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुं। यद्यप्य स्वधर्मेन मां भन्नीयात् अनागसं तथाप्येनं न हिंशिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुं। यद्यप्य स्वधर्मेन मां भन्नीयात् अनागसं तथाप्येनं न हिंशिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुं। शब्दार्थ यद्यपि, यद्यपि असौ भगवान विष्णु अधर्मेन छल से मां मुझको बंदनियात मारते हैं, अनागसम यद्यपि मैं पापी नहीं हूँ, तथापि फिर भी एनम उनके विरुद्ध न नहीं हिंसिष्ये बदला लूंगा, भीतम क्योंकि वे भयभीत हैं, ब्रह्मतनुम ब्रह्मचारी का वेश धारण करके, रिपुम भले ही वे मेरे शत्रु हो। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। यद्यपि वे साक्षात विष्णु हैं, किंतु भयवश उन्होंने मेरे पास आकर भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है, तो वे चाहे अधर्म द्वारा मुझे बंदी बनाते हैं या मेरा वध कर देते हैं, तब भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, यद्यपि वे मेरे शत्रु हैं। तात्पर्य, यदि विष्णु जिस रूप में हैं उसी में बलि महाराज के पास आए होते और उनसे कुछ करने को कहा होता, तो यह निश्चित है कि वे उनकी प्रार्थना को अस्वीकार न करते। लेकिन अपने तथा अपने भक्त के बीच कुछ रसास्वादन हेतु भगवान ने ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और वे बलि महाराज से केवल 3 पग भूमि मांगे। तो यहाँ पर बलि महाराज अलग अलग कारण प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्यों वो दान देना चाहिए, और यहाँ पर बलि महाराज कह रहे हैं कि यद्यपि वे साक्षात विष्णु हैं और वो कहते हैं कि बदनियात और तो हालांकि ये जो विष्णु जो है भगवान विष्णु, अगर वो मुझे मारने भी क्यों ना आते, लेकिन फिर भी मैं बदला नहीं लूंगा और जो भी दान मांगते हैं वो मैं जरूर दूंगा। और कहते हैं कि क्योंकि वो तो ठीक है अभी भगवान के रूप में नहीं आए, लेकिन एक ब्राह्मण के रूप में आए, और क्योंकि एक ब्राह्मण के रूप में ब्रह्म तनुम रिपुम, तो ब्रह्म तनुम एक ब्राह्मण के रूप में आए, और क्योंकि वो ब्राह्मण के रूप में आए इसलिए रिपुम, रिपुम का मतलब है वो मेरा शत्रु भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं बदला नहीं लूंगा, और जो भी वो मांगते हैं वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार बलि महाराज अलग अलग कारण दे रहे हैं। यहाँ पर मुख्यतर यह कारण दे रहे क्योंकि ये जो भगवान है वो भगवान के रूप में नहीं आए, ब्राह्मण के रूप में आए, और इसलिए मैं जरूर उनको दान दूंगा। भगवान श्री कृष्ण का यश फैलाने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ करने का तय किया और उस हेतु महाराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा। जितने भी इस भूमि पर जितने भी राजा थे उन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा। तो चारों भाई इस भूमि पे चारों दिशाओं में जाकर सभी राजाओं पर विजय प्राप्त किया, लेकिन एक राजा बच गया। कौन था वो? जरासंध। तो वापस आए और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि इस प्रकार जितने भी राजा हैं सब महाराज युधिष्ठिर को स्वीकार किया है, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़कर, वो है जरासंध। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, उद्धव जी ने हमें एक बहुत अच्छी सलाह दी है, तो इसके पहले ही उद्धव जी बताते हैं कि किस प्रकार जरासंध को मार दिया जाए। तभी भगवान कहते हैं कि उद्धव जी ने ऑलरेडी सलाह दी है और इसलिए हम तीनों जो हैं, मैं, भीम और अर्जुन, ब्राह्मण के वेश में जाकर जरासंध से भिक्षा मांगेंगे। तो भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों जाते हैं जरासंध के पास। तो पूरा रिसर्च करके जाते हैं कौन से समय पर जाना है। जिस समय जरासंध, उनका एक डेली रूटीन होता था दान देने का एक समय पर, तो उसी समय पर तीनों ब्राह्मण वेश में गए। तो जरासंध ने उनको देखा और तीनों और भगवान कहने लगे जरासंध से, हे मान राजा, हम आपके पास आए हैं कुछ भीख मांगने के लिए, कृपया करके हम जो भी चाहते हैं उस भिक्षा को आप प्रदान कीजिए। तो जरासंध इन तीन व्यक्तियों को देखता है और थोड़ा सोच विचार में पड़ता है। तो भगवान कहते हैं तीन चीज, भगवान कहते हैं कि जो सहनशील है उनके लिए असहनीय क्या है, जो दानवीर होते हैं वो क्या दान में नहीं दे सकते हैं, और जो समदर्शी होते हैं उनके लिए शत्रु कौन और मित्र कौन। इस प्रकार तीन चीज भगवान कहते हैं। ये तीन चीज क्यों कहते हैं? आचार्यगण जरासंध का जो मनोवृत्ति है उसके बारे में बताते हैं। तो हो सकता है कि जरासंध सोच सकता है कि अगर ये लोग जो है, अगर मेरे पुत्र को मांगते हैं जो मेरे लिए बहुत ही कठिन है दान में देना, अगर पुत्र को मांगे तो इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है, पुत्र का विरह सहन करना तो जरूर असहनीय है, लेकिन जो व्यक्ति सहनशील होता है उस व्यक्ति को क्या असहनीय है? इसलिए पहले भगवान बता देते हैं और फिर जरासंध सोच सकते हैं कि क्या अगर ये व्यक्ति मेरा प्राण को ही मांगते हैं, या हो सकता है कि मेरे जो आभूषण है, मेरा जो धन है वो मांग सकते हैं। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि जो दानवीर व्यक्ति होता है वो क्या दान में नहीं दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। तो इसलिए भगवान वो कहते हैं। और फिर हो सकता है कि जरासंध सोचे कि ये लोग जो सामने आए हैं वो कौन हैं, क्या ये शत्रु हैं या मित्र हैं? अगर वो शत्रु हैं तो शत्रु को दान कैसे दिया जा सकता है? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति समदर्शन होता है उनके लिए कौन शत्रु और कौन मित्र। तो इसलिए भगवान जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अगर भगवान छल करना चाहते हैं तो भगवान क्या नहीं कर सकते हैं? तो इसलिए भगवान पहले बता देते हैं, जिस व्यक्ति के लिए, जो सहनशील व्यक्ति है उस व्यक्ति के लिए क्या असहनीय है, जो व्यक्ति दानवीर होता है वो क्या दान में नहीं दे सकता है, और जो व्यक्ति समदर्शन होता है उनके लिए कौन शत्रु है कौन मित्र है। तो इस प्रकार भगवान जब कहते हैं तो जरासंध सोचता है सही बात है, ये लोग तो ब्राह्मण बनकर आए हैं, ये ब्राह्मण है, लेकिन इन तीनों का जो बॉडली फीचर्स हैं वो देखकर जरासंध को लगता है कि लगता है ये तो ब्राह्मण नहीं है। लगता है कि ये कोई शत्रुबंधु है, राजन्य बंधु हैं, सही क्षत्रिय नहीं है, सही राजा नहीं है, क्योंकि अगर सही क्षत्रिय होता तो ऐसे ब्राह्मण वेश में क्यों आता? लेकिन जो भी है, ऐसे ब्राह्मणों को दान देना ये तो राजाओं का कर्तव्य है। ऐसे दान देने से जो ऋषिगण हैं, जो साधुगण हैं, वो भी सराहना करते हैं, गुणगान करते हैं ऐसे लोगों का जो दान में देते हैं। और अगर व्यक्ति दान में नहीं देता है तो ऐसा व्यक्ति निंदनीय है, तिरस्कार के पात्र है। इस प्रकार जरासंध सोचता है। और फिर आगे जरासंध सोचता है, इतिहास में कितने सारे बड़े बड़े लोगों ने दान में दिया है, क्या नहीं दिया है? महान राजा हुए हैं जैसे कि हरिश्चंद्र, शिबी महाराज, और फिर जरासंध बलि महाराज के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि बलि महाराज के लिए तो स्वयं भगवान एक ब्रह्मचारी के रूप में आए और सब कुछ ले लिया। लेकिन हालांकि स्वयं उनके गुरु बता रहे थे दान में नहीं देने के लिए, फिर भी बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया था। तो इस प्रकार सोचते हुए तो जरासंध कहते हैं कि ठीक है, अब मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं जो आप मांगते हैं। और तभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम लोग आपसे युद्ध मांगने आए हैं, और कुछ नहीं चाहिए, युद्ध मांगने। यह सुनकर जरासंध जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि किस प्रकार के क्षत्रिय है ये, ब्राह्मण रूप में आकर ये लोग तो ऑलरेडी पराजित हो चुके हैं, अगर वास्तव में ये क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के रूप में सामने आना चाहिए, इस प्रकार वेश बदल कर क्यों आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, वचन दिया था जो भी मांगते हैं वो देने के लिए। तो इसलिए जरासंध कहता है कि तो भगवान कृष्ण कहते हैं अपना जो असली रूप है वो बताता है कि मैं कृष्ण हूं, ये अर्जुन है, ये भीम है। और फिर जरासंध कहता है कृष्ण ये तो कायर है, डरपोक है, इसलिए मैं उनसे लड़ाई नहीं करूंगा, और ये अर्जुन जो है ये तो मुझसे उम्र में कम है और इतना शक्तिशाली नहीं है, तो इसलिए मैं इनसे भी युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन ये भीम जो है ये बराबरी है, इसलिए इनसे मैं युद्ध करूंगा। और हम जानते हैं कि किस प्रकार भीम और जरासंध के बीच में युद्ध होता है, और फिर अंत में भीम जरासंध का अंत कर देता है। पॉइंट यह है कि किस प्रकार जरासंध जैसे राक्षसी व्यक्ति भी ब्राह्मणों को देखकर दान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वही बात यहां पर बलि महाराज भी कह रहे हैं कि क्योंकि यहां पर जो व्यक्ति सामने उपस्थित हैं वो ब्राह्मण के रूप में आए हैं, तो इसलिए मैं दान देने के लिए तैयार हूं। और जिस प्रकार जरासंध भी कहता है कि अगर तुम लोग मेरा सिर भी क्यों ना मांगे, मैं देने के लिए तैयार हूं, इसी प्रकार यहां पर बलि महाराज भी कहते हैं कि अगर ये ब्राह्मण मेरा वध भी क्यों ना करे, लेकिन फिर मैं दान देने के लिए तैयार हूं। तो ब्राह्मणों के लिए दान देना इतना श्रेष्ठ क्यों है, और क्यों ऐसे क्रूर राजा भी है वो क्यों दान में देना चाहते हैं। तो इसके बारे में प्रीतु महाराज चौथे स्कंद में समझाते हैं, और प्रीतु महाराज समझाते हैं कि क्यों वैश्य ब्राह्मण और वैष्णव क्यों श्रेष्ठ हैं, वो समझाते हैं। और प्रीतु महाराज आठ कारण बताते हैं कि क्यों ब्राह्मण और वैष्णव श्रेष्ठ हैं, और इसलिए ब्राह्मण और वैष्णव को दान में देना या उनके लिए सेवा करना क्यों श्रेष्ठ है, इसके बारे में प्रीतु महाराज अपने नागरिकों को बताते हैं। तो पहला कारण वो बताते हैं कि जो ब्राह्मण है वो अपने गुणों के लिए मशहूर है। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर इसके बारे में बताते हैं कि जो ब्राह्मण जो होते हैं वो जन्म से ब्राह्मण नहीं होते हैं, बल्कि वो अपने गुणों के द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं ब्राह्मणों के कितने गुण, नौ गुण बताते हैं, कौन कौन से, शम दम तप शौचम आर्जवम ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम और शांति। नवगुण बताते हैं। तो इस प्रकार जो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास ये गुण है। तो कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं बनता है, और क्योंकि ये गुण होते हैं तो इसलिए ब्राह्मण का गुणगान किया जाता है। और इसलिए पृथु महाराज कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मण जिनमें ये सब गुण है वो क्षत्रिय से भी ज्यादा प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। और इसलिए जो राजागण है, जो क्षत्रिय है, उनको ऐसे ब्राह्मणों का निंदा या अपराध नहीं करना चाहिए। तो ये पहला कारण बताते हैं। दूसरा कारण बताते हैं कि स्वयं भगवान उनको यश प्राप्त हुआ है ऐसे ब्राह्मण और वैष्णव का पूजा करके, या उनके चरण कमलों को पूजा करके स्वयं भगवान को भी यश प्राप्त हुआ है। कहने का यह मतलब है कि भगवान जो है, भगवान को भी कहा जाता है नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। तो भगवान इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि वो ब्राह्मणों का पूजा करते हैं, और स्वयं भगवान ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। जब भगवान नारद मुनि आते हैं उनके सभा में, या सुदामा ब्राह्मण आते हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान उनको आदर सम्मान देते हैं। तो स्वयं भगवान एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार ब्राह्मणों को आदर सम्मान देना चाहिए। तो यह है दूसरा कारण। तीसरा कारण वो बताते हैं कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई उनके पद चिन्हों पर चलकर वो ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा करते हैं, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण उनको बहुत ही प्रिय हैं और ब्राह्मणों को भगवान अत्यंत प्रिय हैं। तो इस प्रकार भगवान, क्योंकि ब्राह्मण को भगवान बहुत प्रिय हैं, और इसलिए भगवान भी ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करना चाहते हैं, और जो उनके पदचिन्हों पर चलते हैं वो भी भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं चाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए चकीबा। यहां विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुटोपि। तो इसलिए वैष्णव की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार भगवान अर्जुन को कहते हैं, जो आदि पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति कहता है कि वो मेरा भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि मेरे भक्तों का भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त है। तो इस प्रकार भगवान को ये जो वैष्णव सेवा है, ब्राह्मणों की सेवा जो है, ये अत्यंत ही प्रिय है। तो इसलिए जो भगवान के पदचिन्हों पर चलते हुए ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा करता है वो भी भगवान को अत्यंत प्रिय बन जाता है। तो इसलिए यहां पर ऐसे राजागण जो हैं वो ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा करना चाहते हैं। चौथा कारण बताते हैं कि ऐसे नियमित रूप से ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा करने से हृदय में जो अनर्थ है, जो मल है, वो साफ हो जाता है, और फिर व्यक्ति मुक्ति का पात्र बन जाता है, और इस भौतिक आकर्षण से वो मुक्त हो जाता है और पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। तो ये परिणाम है वैष्णवों की सेवा करने का। तो परिणाम यह है कि क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं तो इसलिए जो भी हृदय में जो अनर्थ है वो साफ हो जाते हैं, और जो भौतिक आकर्षण है, भौतिक आसक्ति है और भौतिक इच्छाएं हैं वो सब साफ हो जाते हैं और व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो नारद मुनि जो एक दासी पुत्र थे, ऐसे ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा करने से ज्ञान प्राप्त होता है और इसलिए वो पूरी तरह से शुद्ध होकर नारद मुनि बन जाते हैं। पांचवा कारण पृथु महाराज बताते हैं कि भगवान अनंत जो अग्नि के द्वारा लोगों का जो आहुति है स्वीकार करते हैं, लेकिन वही भगवान ब्राह्मण और वैष्णव के मुंह से खाते हैं और ब्राह्मण और वैष्णव के खिलाने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार जब ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा किया जाता है, भगवान उस स्थान को छोड़ते नहीं हैं और भगवान वहां पर हमेशा विराजमान रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव जो हैं वो हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं और जिस स्थान पर भगवान का गुणगान होता है उस स्थान को भगवान छोड़ते नहीं। जिसकी भगवान कहते हैं नहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। तो भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, लेकिन जहाँ पर मेरा गुणगान होता है वहाँ पर मैं रहता हूँ। तो जहाँ पर वैष्णव है, ब्राह्मण है, क्योंकि वो भगवान का गुणगान करते हैं तो इसलिए उस स्थान पर भगवान रहते हैं। छठा कारण वो बताते हैं कि ब्राह्मण सभ्यता में या ब्राह्मण संस्कृति में जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपना स्तर इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि वो हमेशा शास्त्रों का पालन करते हैं, शास्त्र के ऊपर पूरी तरह से श्रद्धा है, तपस्या करते हैं और अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके भगवान पर भगवान को केंद्र में रखते हुए भगवान पर ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार वो अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एक मुख्य चीज बताते हैं कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनको पूरी तरह से शास्त्र पर विश्वास होता है और इस विश्वास के साथ अपना जीवन जीते हैं और इसलिए वो अपना जो ब्राह्मण के गुण जो है उन गुण को वो मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य पॉइंट यह है कि ब्राह्मण जो है उनको पूरी तरह से शास्त्र पर विश्वास होता है और शास्त्र के आधार पर ही अपना जीवन को निभाते हैं। तो इस तात्पर्य में श्री ब्रह्मा जी बताते हैं कि कोई ब्राह्मण इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन क्योंकि उनमें ये सब गुण होते हैं, ब्राह्मण के गुण होते हैं, इसलिए वो ब्राह्मण। तो अनेक लेक्चर्स में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार हमें ये ब्राह्मण गुण को विकसित करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ब्राह्मण गुण को विकसित नहीं करते हैं और सत्वगुण पर नहीं आते हैं तो फिर एक वैष्णव बनना बहुत ही मुश्किल है। भगवान को प्रसन्न करना और वैष्णव बनना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहले सत्वगुण पर आना ये बहुत जरूरी है और अपना जीवन इस प्रकार निभाना जिससे हम सत्वगुण पर रह सकते हैं ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने हमारे संस्था में इस प्रकार का दिनचर्या दिया है जिससे हम अच्छी तरह से सत्वगुण पर रह सकते हैं। तो जो भी श्री प्रभुपाद जी ने हमें बताया है, सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती अटेंड करना, जप करना, श्रीमद् भागवतम क्लास अटेंड करना और जो भी सेवाएं हैं ये सब दिनचर्य जो हैं जो श्री प्रभुपाद जी ने बताए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको पालन करने से कम सत्वगुण पर आ जाएंगे। और ये जो सत्वगुण जो है ये एक अनुकूल परिस्थिति है शुद्ध सत्व पर आने के लिए। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी अक्सर बताते थे कि ये जो ब्राह्मण के गुण जो है इसको विकसित करना बहुत जरूरी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ऑफकोर्स श्री प्रभुपाद जी ने इन गुणों के बारे में अनेक लेक्चर्स दिए हैं, लेकिन एक चीज श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, एक लेक्चर में बताते हैं कि एक ब्राह्मण जो होता है वो एक ऐश्वर्यवान जीवन नहीं जीता है। वो अपने लिए एक सुंदर घर बनाना और बहुत सारी ऐश्वर्य प्राप्त करना इसमें नहीं लगा रहता है। A devotee, a Brahman, does not build a house, he builds character. तो प्रभा जी कहते हैं कि एक ब्राह्मण जो है वो एक घर नहीं बांधता है बल्कि वो चरित्र को बांधता है या चरित्र को विकसित करता है। क्योंकि भगवान इन गुणों को देखकर आकर्षित होता है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि जब प्रीतु महाराज, हम जानते हैं ये कथा कि किस प्रकार जब प्रीतु महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उस समय इंद्र बार बार आकर घोड़े को चुराते हैं और अंततः वहां पर ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि ठीक है यह जो यज्ञ करना है इसको छोड़ दो। तो उस समय ब्रह्मा जी तुरंत स्वीकार करते हैं, प्रीतु महाराज तुरंत स्वीकार करते हैं और उस यज्ञ को बंद कर देते हैं। तो उस समय वहां पर कौन आता है? स्वयं भगवान आते हैं। हालांकि प्रीतु महाराज ने यज्ञ करना बंद कर देते हैं लेकिन फिर भी भगवान विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं और स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रीतु महाराज, मैं तुम्हारे जो गुण हैं इनसे मैं बहुत ही आकर्षित हूं। आई एम कैप्टिवेटेड बाय द वंडरफुल क्वालिटीज यू पोसेस। इस प्रकार प्रीतु महाराज भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं प्रीतु महाराज। तो इस प्रकार जो ब्राह्मण और वैष्णव जो हैं उनके लिए ये गुण विकसित करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन गुणों से भगवान आकर्षित होते हैं। और इसलिए कम से कम जो ब्राह्मण के गुण हैं, जो सत्वगुण के गुण हैं, ये गुण होना चाहिए, फिर हम धीरे धीरे शुद्ध सत्व के स्तर पर हम आ सकते हैं। आगे प्रीतु महाराज कहते हैं, एक सातवां चीज वो कहते हैं, तो प्रीतु महाराज अपने जो नागरिक हैं उनसे ये आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरे मुकुट पर हमेशा ब्राह्मण और वैष्णव के पद धूलि वो हमेशा मेरे मुकुट पर रहे। क्यों? क्योंकि इससे मैं बहुत जल्दी ही मेरे पापमय जीवन के जितने भी रिएक्शंस हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उन सब से मैं मुक्त हो जाऊंगा और सभी प्रकार के अच्छे गुण प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार स्वयं प्रीतु महाराज जो शक्तिवेश अवतार है लेकिन ब्राह्मण और वैष्णव के पदधूलि को चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से शुद्ध हो सकते हैं इससे। और आखिरी में वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त करता है, और मुख्यतः तीन चीज कहते हैं जिनमें अच्छा व्यवहार हो, जो कृतज्ञ है और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, वहां पर संस्कृत में शब्द आया है वृद्ध आश्रयम, जो वृद्ध हैं। तो वहां पर प्रभुपाद जी समझाते दो प्रकार के वृद्ध लोग हैं, एक है उम्र में वृद्ध और दूसरा है ज्ञान में वृद्ध। और दोस्त ओल्ड माय नॉलेज और रियलाइजेशन, वृद्ध आश्रयम, तो ऐसे वृद्ध या अनुभवी या जिनके पास ज्ञान है ऐसे लोगों का शरण लेने से, तो तीन चीज बताते हैं, तो ये तीन चीज जिनके पास है ऐसे लोगों का शरण लेने से तो सभी प्रकार के ऐश्वर्य व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रीतु महाराज ब्राह्मण और वैष्णवों का गुणगान करते हैं क्योंकि उनमें सब प्रकार के सद्गुण हैं और ये सद्गुण होने से वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि महान राजागण जैसे प्रीतु महाराज और अनेक राजा हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर बलि महाराज है और यहाँ पर जो जरासंध है, जरासंध भी वो दान देना चाहता है ब्राह्मणों को क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे दान देने से ब्राह्मणों को भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के ऐश्वर्य व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए हमारे जीवन में ये ब्राह्मण के गुण विकसित करना ये बहुत जरूरी है भगवान को प्रिय बनने के लिए। तो ऐसे दो महान वैष्णवों के आविर्भाव तिथि हैं आज, एक है श्यामानंद पंडित। तो श्यामानंद पंडित जो थे उनका पहला नाम था दुखी कृष्ण क्योंकि उनके बहुत सारे पुत्र का देहांत हो जाता है तो इसलिए उनका नाम था दुखी कृष्ण, बहुत दुखी रहते थे इसलिए उनका नाम था दुखी कृष्ण। तो ये दुखी कृष्ण जो है वो हृदय चैतन्य उनके शिष्य बन जाते हैं और हृदय चैतन्य उनको भेजते हैं जीव गोस्वामी के पास शास्त्र पढ़ने के लिए। तो यहाँ वहाँ पर जीव गोस्वामी के आश्रम में ये तीन बहुत ही प्रसिद्ध वैष्णव आए शिक्षा प्रदान करने के लिए। कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। तो हालांकि ये तीन अलग अलग गुरु के शिष्य थे लेकिन तीनों आते हैं जीव गोस्वामी के पास शिक्षा प्रदान करने, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और हम देखते हैं कि किस प्रकार ये तीनों जो है जीव गोस्वामी से शास्त्र के बारे में या शास्त्र पढ़ने के बाद फिर बाद में जीव गोस्वामी उनको भेजते हैं पुस्तक वितरण के लिए। जो भी गोस्वामी के लिटरेचर्स जो हैं, किताब जो हैं, ग्रंथ हैं, उनको बांटने के लिए भेजते हैं इन तीनों को। तो श्यामानंद पंडित की जो कथा है काफी लंबी कथा है, लेकिन संक्षेप में हम कुछ बताएंगे। तो श्यामानंद पंडित वृंदावन में सेवा करते थे और हर रोज वृंदावन के जो सड़क हैं वो झाड़ू मारते थे, साफ करते थे। तो एक दिन जब वो साफ कर रहे थे वहां पर एक नुपुर प्राप्त होता है। तो उस नुपुर को प्राप्त कर उसको देखते ही श्यामानंद पंडित को लगता है कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो वो अपने घर लेकर जाता है लेकिन वो जो नुपुर था वो श्रीमती राधा रानी का था। तो ललिता और विशाखा सखी वो उसको ढूंढने जाते हैं और उनको पता चलता है कि ये श्यामानंद प्रभु अपने अगले दिन जब श्यामानंद प्रभु वहां पर झाड़ू मारने के लिए आते हैं तो वो पूछते हैं श्यामानंद प्रभु को कि क्या आपने देखा है इस प्रकार का नुपुर? तो कहते हैं हाँ मेरे पास है लेकिन अगर मैं इसको वापस तभी दूंगा जब इसका जो असली मालिक है वो मेरे सामने आता है तभी मैं वापस दूंगा। तो ठीक है, तो ललिता और विशाखा सखी जाकर राधा रानी को बताते हैं। तो उस समय राधा रानी वहां पर आती हैं और लेकिन कंडीशन ये था कि श्यामानंद पंडित का जो आंखें हैं उस आंखों पर एक पट्टी बांधते हैं जिसे वो पता नहीं चले कि क्यों आए, कौन आया सामने। तो राधा रानी वहां पर आती हैं और फिर वो नुपुर वापस दे देता है। लेकिन उस समय तो कुछ लोगों का कहना है कि श्यामानंद या दुखी कृष्णा स्वयं उस नुपुर से नुपुर को अपने माथे को लगाता है, इसलिए एक चिन्ह बन जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं राधा रानी उस नुपुर से एक चिन्ह बना देती है और फिर वो वापस दे देता है। लेकिन जब वापस जीव गोस्वामी के पास आते हैं श्यामानंद दुखी कृष्णा और पूरी कथा बताते हैं, तो तभी जीव गोस्वामी उनको नाम देते हैं श्यामानंद, जो श्रीमती राधा रानी को जिन्होंने आनंद दिया है। तो अभी श्यामानंद पंडित का एक दुखी कृष्ण का नया नाम होता है श्यामानंद और एक नया तिलक भी होता है। तो यह समाचार जो है हृदय चैतन्य के पास पहुंच जाता है। तो जब हृदय चैतन्य को पता चलता है तो हृदय चैतन्य सोचता है, अरे मैंने तो मेरे शिष्य को भेजा था वृंदावन शास्त्र पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तो पथभ्रष्ट हो गया है, कुछ दूसरा संप्रदाय को अपनाया है, कुछ दूसरा गुरु को अपनाया है, कुछ दूसरा संप्रदाय को अपनाया है, क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो हृदय चैतन्य के मन में कुछ संकोच आता है, कुछ डाउट आता है और फिर हृदय चैतन्य अनेक वैष्णव के साथ आते हैं वृंदावन में और फिर वृंदावन में सभी वैष्णव के सामने श्यामानंद पंडित को बुलाया जाता है और अंत में यह सिद्ध कर दिया जाता है कि ठीक है, ये ऑथराइज है, ये बोनाफाइड है, ये श्रीमती राधा रानी ही ये नाम दिया है, ये चिन्ह दिया है। और इस प्रकार श्यामानंद पंडित बहुत ही प्रसिद्ध वैष्णव बन जाते हैं और बहुत सारे ग्रंथ भी लिखते हैं। और तो उनका जो विग्रह है उनका नाम है राधा श्याम सुंदर, वृंदावन में हम देखते हैं। और इस प्रकार श्यामानंद पंडित हैं, उनके बहुत ही एक मशहूर शिष्य थे, उनका नाम था रसिकानंद। और श्यामानंद पंडित और रसिकानंद मुख्यतः उड़ीसा में बहुत प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग उड़ीसा में वैष्णव बनते हैं। तो और एक वैष्णव का आविर्भाव तिथि है, उनका नाम है वंशीवर्धन ठाकुर। तो वंशीवर्धन ठाकुर सची माता के सेवक थे और तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में, इतना ही बताया गया है कि वो सची माता के सेवक थे। और तो सची माता और ईशान ये दो सेवक थे, ईशान और वंशीवर्धन ठाकुर दो सेवक थे सची माता के। और आध्यात्मिक दुनिया में ये जो भगवान का जो वंशी है इनका अवतार माना जाता है और इन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर कविताएँ भगवान के गुणगान में लिखे थे। तो इस प्रकार ये दो वैष्णव हैं, क्यावर भाव तिथि है और फिर बलराम जी का रस रास पूर्णिमा या जो रासलीला है, बलराम जी के भी भगवान कृष्ण और बलराम जी के अलग अलग गोपियाँ थीं, तो बलराम जी भी रासलीला करते हैं अपने गोपियों के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसका कुछ प्रश्न है?
धन्यवाद प्रभु जी। जैसे आप बता रहे थे मुझे कि श्यामानंद प्रभु के बारे में बता रहे थे, तो उस मेरे मन में ऐसी एक जिज्ञासा है कि श्यामानंद प्रभु ने राधा रानी को प्रसन्न किया तभी राधा रानी ने ऐसी लीला की कि नुपुर भूल गई और फिर वो नुपुर के बहाने राधा रानी के उनको दर्शन हुए, राधा रानी को जो है नुपुर भी लगाया या वो जो भी हुआ। तो ऐसा क्या वर्णन आता है कि क्या उन्होंने विशेष किया या कैसे किस कारण राधा रानी श्यामानंद प्रभु से जो है वो प्रसन्न हुई, आकर्षित हुई, क्योंकि वो उनको उन्होंने कृपा दिया? तो
क्योंकि बहुत ही विनम्र भाव से श्यामानंद प्रभु सेवा कर रहे थे। हाँ, तो हर रोज वो वृंदावन के सड़कों को और सारी जगह को झाड़ू मार रहे थे विनम्रता से सेवा कर रहे थे। तो जब हम सेवा करते हैं तभी भगवान प्रसन्न होते हैं वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए। तो उनका भाव यही था। तो कहा जाता कि रात को वो झाड़ू मारते थे, ऐसा नहीं कि दिन में ताकि सब लोग जान जाए, वो रात में झाड़ू मारते थे, एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे कि देखो मैं क्या कितना सेवा कर रहा हूँ। तो रात में सेवा करते थे ताकि सुबह जब वैष्णव आएंगे तो सारे सड़क पर सब साफ हो। तो इस भावना से वो सेवा कर रहे थे। तो इसलिए जब हम सेवा करते हैं तो वही हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्राह्मण और वैष्णव के लिए जब हम सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। समवेद गौड़ भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की।